हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तेजा ने मेहर के साथ पूरी मनमानी की। कुछ समय बाद मेहर ने तेजा के सामने अपने हथियार टेक दिए थे, क्योंकि वो जानती थी कि तेजा जैसे मजबूत इंसान के सामने वो छुई मुई सी लड़की ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। पूरे 2 घंटे अपनी मनमानी करने के बाद तेजा ने मेहर को बड़े ही प्यार से अपनी मजबूत बाहों में पकड़कर उसके माथे पर किस किया। क्या जरूरत है मेहर मैडम आपको राजवीर साहब की, जबकि राजवीर साहब की कमी मैं अच्छी तरह से दूर कर सकता हूँ, तेजा बोला। और वैसे भी जिस दिन आपने मेरे साथ रिश्ता बनाया था उसी दिन से आप मेरे दिल में भी जगह बना चुकी हैं, और आप अरमान सबकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। जैसे ही उन्हें राजवीर की हरकतों के बारे में पता चलेगा वे खुद राजवीर से आपका तलाक करवा देंगे। उसके बाद मैं आपसे शादी कर लूँगा और फिर हम हमेशा एक साथ रहेंगे। तेजा आगे का भविष्य योजना तैयार कर चुका था। मेहर खाली खाली नज़रों से तेजा की ओर देखने लगी थी। दूसरी ओर ज़ोया ने आज बड़ी ही कड़े शब्दों में अबीर सिंह राठौर की निंदा की थी। अब अबीर अपनी गलती मान चुका था। वो जानता था कि उसने जो भी किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, और अब उसकी भरपाई उसे चुकानी होगी। वो इसकी कीमत ज़ोया से दूर रहकर चुकाएगा। ज़ोया को आज 7वां दिन था। वो हर रोज़ अपनी बेटी को देखने के लिए ज़रूर जाती थी और फिर उसके बाद अपने कमरे में आराम करती थी। अबीर सिंह राठौर हर तरह से उसका ख्याल रख रहा था, लेकिन उन दोनों के बीच बातचीत केवल ना के बराबर ही होती थी। सिर्फ हाँ ना में ही जवाब होते थे। ज़ोया की हालत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। अब वो खुद से चल फिरने के साथ साथ दौड़ भी सकती थी। अबीर सिंह राठौर ने उसके सेहत का ध्यान रखने के लिए उसके पास नौकरों की फ़ौज लगा रखी थी। साथ ही साथ एक लेडी की पूरी जिम्मेदारी थी कि वो ज़ोया को रोज़ योगा कराए, साथ ही साथ वो उसे दौड़ने के लिए सुबह सुबह वॉक पर भी ले जाए। अबीर ये सारे काम अपनी निगरानी में करवा रहा था। अबीर सिंह राठौर को लगने लगा था कि अब ज़ोया के लिए अगला कदम उठाने का समय आ गया है। उसने कुछ ज़रूरी कागज़ ज़ोया के हाथ में थमा दिए। ज़ोया उन कागज़ों को पढ़ने के बाद हैरानी से अबीर सिंह राठौर की ओर देखने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अरमान ने किसी तरह से अकरम के साथ एक मीटिंग तय कर ली थी। नहीं जानते थे कि अरमान के दिमाग में क्या चल रहा था। वो बस एक बार अकरम से मिलना चाहता था। तय किए गए वक्त पर वे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। अरमान एक मुस्कान के साथ अकरम की ओर देख रहा था। अकरम बड़ी बड़ी गुस्से वाली आँखें करके अकरम की ओर देख रहा था। तभी अरमान बोलना शुरू किया। मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। इनफैक्ट तुम्हारा ये दिल चाह रहा होगा कि तुम ये गन लो और उसे उठाकर मेरा भेजा उड़ा दो, है ना? ये दिल कर रहा है ना तुम्हारा? ऐसा कहकर अरमान बहुत ही ज़ोर से हंसने लगा। अकरम गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींचता हुआ उसे देखता रहा। तब अकरम ने अरमान की ओर अपनी लाल आँखों से देखते हुए कहा, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? चाहते क्या हो तुम? आखिर क्या मकसद है तुम्हारा इस मीटिंग के पीछे? अकरम की बात सुनकर अरमान, जो कि हंस रहा था, उसने अपनी हंसी को एकदम से रोक दिया और अपना चेहरा एकदम से अकरम के करीब ले जाकर बोला, श, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान ठाकुर के सामने बैठकर उसे ऊंची आवाज में बात करने की? ओहो एसआई साहब, क्या आप एक देश से दूसरे देश के आ गए? आपके दिल में तो अरमान ठाकुर का खौफ ही खत्म हो गया। आखिर क्या रीज़न है इस खौफ के ख़त्म होने का? कहीं वो तो नहीं, वो अबीर सिंह राठौर? ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कहते हुए अरमान ने अबीर का मजाक उड़ाया था। अरमान का ये रवैया अकरम को काफ़ी ज़्यादा कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अरमान ठाकुर, लगता है तुम अबीर सिंह राठौर से डर रहे हो। केवल यही एक रीज़न है कि तुम अपना डर छुपाने के लिए इस तरह से हंस रहे हो। जैसे ही अकरम ने ये कहा, अरमान ठाकुर का गुस्सा बढ़ गया और उसने गन निकालकर अकरम के माथे पर तान दी। तब अकरम बिना डरे बोला, अरमान ठाकुर, तुम मुझे यहाँ नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बात मिस्टर अबीर सिंह राठौर को तो पता ही है, साथ ही साथ यहाँ के जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उन सबको ये बात पता है, और मेरा खून करके तुम इस देश को छोड़कर कभी नहीं जा पाओगे, समझे तुम? अकरम की बात सुनकर अरमान ने उसके माथे से गन हटा ली और बोला, मैं तो डर गया। ये देखो, ये देखो, मेरे तो हाथों के रोंगटे खड़े हो गए तुम्हारी बात सुनकर। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, देखो। ऐसा कहकर अरमान एक बार फिर हंसने लगा। तब अकरम ने उसे कहा, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही अक्रम उठकर जाने लगा, अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसा कहकर अरमान ने वापस अक्रम को अपने सामने कुर्सी पर बिठा दिया। तब अरमान बोला, एसआई साहब, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये बात नहीं जानता कि आप ज़ोया को कहाँ से ढूंढ कर लाओगे, लेकिन मुझे हर हाल में ज़ोया चाहिए। एक और बात, अगर आपने मुझे ज़ोया का पता नहीं बताया तो इंडिया में जो आपके पेरेंट्स मौजूद हैं, मैं उनकी जान ले लूँगा। भले ही इस देश में मेरा कोई हुक्म न चलता हो, लेकिन तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे देश में मेरा कितना हुक्म चलता है। अक्रम की बात सुनकर अक्रम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और वो बोला, मैं नहीं जानता हूँ ज़ोया कहाँ है, और रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो मेरे बाप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब से उसने किसी और के लिए मेरी माँ को धोखा देकर दूसरी शादी की है, तब से मैं उससे अपने किसी संपर्क में नहीं हूँ। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। ऐसा कहकर अक्रम ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुझे अपने बाप से मोहब्बत नहीं है तो ठीक है, हम तेरे बाप को आज ही मरवा देते हैं। ऐसा कहकर अरमान ने किसी को फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकाल लिया और तभी एक वीडियो अक्रम को दिखाते हुए बोला, ये देखना, यही तेरा बाप है ना, कहीं हमने किसी और को तो नहीं उठा लिया ना। जैसे ही अक्रम ने अपने पिता की वीडियो अरमान के फ़ोन में देखी, उसके होश उड़ गए। अरमान ने अक्रम के पिता का अपहरण कर लिया था और उसे खूब मारा पीटा था। अरमान ने अक्रम को मजबूर करने के लिए एक नई साजिश रची थी। अक्रम चाहे अपने बाप से कितनी भी नफरत क्यों ना करता हो, लेकिन असल में तो वो उसका बाप ही था, तो वो ऐसे अपनी आंखों के सामने कैसे अपने बाप को मरने दे सकता था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर अक्रम की आंखें भर आईं और वो अरमान के सामने हाथ जोड़कर गिरते हुए बोला, भले ही मेरे पिता से मेरा कोई रिश्ता ना हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि उनकी मौत इस तरह से हो, और वो भी मेरी वजह से। प्लीज अरमान साहब, मेरे पिता को छोड़ दो। अक्रम की बात सुनकर अरमान हंसने लगा और बोला, अभी तो तेरे लिए तेरा बाप कोई अहमियत नहीं रखता था, और जैसे ही उसकी जान पर बनी, तेरे अंदर के इमोशन बाहर आ गए। ऐसा कहकर अरमान एक बार फिर हंसने लगा और फिर एकदम से चुप होते हुए बोला, अगर अपने बाप की रिहाई चाहता है तो मुझे ज़ोया का पता चाहिए, बता ज़ोया कहाँ है। अक्रम ज़ोया के लिए अरमान के जुनून को उसकी आंखों में साफ देख सकता था। तब अक्रम ने एक गहरी सांस ली और अरमान की ओर देखते हुए बोला, अरमान साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये नहीं जानता ज़ोया कहाँ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगले 6 महीने तक ज़ोया किसी को नहीं मिल सकती है।
अक्रम की बात सुनकर अरमान चौंक गया और बोला, तू झूठ कह रहा है, तुझे ज़रूर पता है कि ज़ोया कहाँ है। देख, मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत कर, सीधे सीधे मुझे ज़ोया का पता बता दे, वरना मैं तेरे बाप की अभी जान ले लूँगा। तब अक्रम लगभग चीखते हुए बोला, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता ज़ोया कहाँ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अबीर सिंह राठौर ने 6 महीने के लिए उसे कहीं गायब कर दिया है, और उसने मुझे खुद बताया था कि अगले 6 महीने तक ना तो मैं और ना ही रिया और ना ही कोई और ज़ोया से मिल सकता है। मैं नहीं जानता अबीर सिंह राठौर क्या करना चाहता है ज़ोया के साथ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो एक काम करो, मेरे बाप को भी मार दो और साथ ही साथ मुझे भी गोली मार दो, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ सच है। अक्रम की बात सुनकर अरमान सोचने पर मजबूर हो गया और फिर बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अरमान ठाकुर, ज़ोया का 6 महीनों का क्या, 6 जन्मों तक इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन तब तक तुम्हारे बाप पर मेरे आदमियों की पूरी पकड़ रहेगी, और जैसे ही ज़ोया का तुम्हें कुछ भी पता चलेगा तो सबसे पहले मुझे बताएगा। ऐसा कहकर अरमान अक्रम को जाने के लिए कह दिया और खुद सोचने लगा कि आखिर 6 महीनों के लिए अबीर सिंह राठौर ने ज़ोया को कहाँ छुपाया होगा। अरमान पूरा 1 महीना अबीर सिंह राठौर के इलाके में रहकर ये जान चुका था कि अबीर सिंह राठौर कोई आम आदमी नहीं है, और अगर उसने खुद से 6 महीने के लिए ज़ोया को कहीं छुपाया है तो डेफिनेटली वो उसका पता नहीं लगा पाएगा। अक्रम ही एक लौता जरिया था जिसके जरिए वो 6 महीने बाद ही सही, लेकिन वो ज़ोया तक ज़रूर पहुँच सकता था। इसीलिए अरमान ने डिसाइड किया था कि वो अक्रम को सारी बात बता देगा और उसके बाद उसे अच्छी तरह से समझा देगा कि अगले 6 महीने तक उस अक्रम पर पूरी तरह से निगरानी रखनी है, और 6 महीने बाद जैसे ही ज़ोया दिखाई देगी और अबीर राठौर उसे आज़ाद करेगा, तब अक्रम उसे लेकर इंडिया आएगा। अरमान ठाकुर कुछ सोचते हुए एक बड़े ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। उसने सोच लिया था कि अक्रम की तरह ही अबीर सिंह राठौर के साथ उसे दिमाग से डील करना होगा, और कुछ सोचकर वो अक्रम से मिलने के लिए रवाना हो गया।